15 जनवरी दिन भर दिन शुक्रवार, मैं हूं संदीप सोनी। दिल्ली पुलिस प्रमुख बीएस बस्ती ने कहा, सुनंदा पुष्कर की मौत स्वाभाविक नहीं थी।
जो इन्वेस्टिगेशन हमारी अब तक हुई है, जब हमारे पास जो मेडिकल एविडेंस अब तक है, उसके बेसिस पे एक बात क्लियर है कि डेथ इज नॉट नेचुरल, इट इज अननेचुरल।
पाकिस्तान में पंजाब के कानून मंत्री ने मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की। विवेचना में आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के अब तक के करियर का विश्लेषण।
अजीत डोवाल एक बहुत ही काबिल और बहुत ही सफल इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं अपने समय में। अजीत डोवाल की जानकारी फॉरेन रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में इतनी नहीं है जितनी उनकी जानकारी इंटेलिजेंस के क्षेत्र में है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। दिल्ली पुलिस प्रमुख बीएस बस्सी ने कहा है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर की मौत स्वाभाविक नहीं थी, लेकिन उनके शरीर से कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं मिला है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की मेडिकल रिपोर्ट और अमरीकी खुफिया विभाग FBI की प्रयोगशाला में सुनंदा के विसरा नमूने की जाँच की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस आयुक्त बस्सी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस हाई प्रोफाइल केस की जाँच जल्द ही पूरी हो जाएगी और इसके सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने उन कई मदरसों को बंद कर दिया है जिनका संचालन कथित तौर पर प्रतिबंधित चरमपंथी गुट जैश ए मोहम्मद कर रहा था। दो दिन पहले ही पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के कथित सदस्यों की गिरफ्तारी की थी। अधिकारियों का कहना है कि इस संगठन के नेता मौलाना मसूद अजहर को भी हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इस संगठन को 14 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया था। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जां क्लॉड यूंकर ने कहा है कि वो इस बात को लेकर बहुत विश्वस्त हैं कि ब्रिटेन की यूरोपीय आयोग से अपने रिश्तों में सुधारों की मांग का एक स्थायी समाधान फरवरी तक निकल आएगा। यूंकर ब्रसेल्स में एक पत्रकार सम्मेलन में बात कर रहे थे।
Not optimistic, not pessimistic. I know that we have to deliver. The commission is doing.
मैं ना तो आशावादी हूँ ना ही हताश हूँ। मैं जानता हूँ कि हमें काम करना ही है। यूरोपीय आयोग जो कर सकता है कर रहा है। मैं विश्वस्त हूँ कि हमारे बीच कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। हम फरवरी तक सिर्फ एक समझौता ही नहीं बल्कि एक स्थायी हल निकाल ही लेंगे। ये थे जां क्लॉड यूंकर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। तुर्की ने कम से कम एक दर्जन अकादमिशियनों को हिरासत में लिया है जिन्होंने कुर्द चरमपंथियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए एक याचिका पर दस्तखत किए थे। तुर्की के करीब 1,000 बुद्धिजीवियों और दर्जनों विदेशी विद्वानों ने हाल में एक घोषणा पत्र पर दस्तखत किए जिसमें सरकार से अपील की गई थी कि वो कुर्द चरमपंथियों को मारना बंद करे और शांति वार्ता की फिर से शुरुआत करे। राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगान ने इन लोगों को देशद्रोही कहकर इनकी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि तुर्की में समस्या कुर्दों की नहीं बल्कि चरमपंथ की है। सियरा लियोन में इबोला की महामारी से एक और मौत हो गई है। कल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की थी कि पश्चिमी अफ्रीका से इबोला खत्म हो चुका है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह चेतावनी भी दी थी कि इस बीमारी के और मरीज अभी हो सकते हैं। गिनी, लाइबेरिया और सियरा लियोन में पिछले 2 साल में इस महामारी से करीब 11,000 लोग मारे जा चुके हैं। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करें संदीप सोनी का। कांग्रेस सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत कैसे हुई, ये गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। आज दिल्ली पुलिस प्रमुख बीएस बस्ती ने कहा कि सुनंदा पुष्कर की मौत स्वाभाविक नहीं थी। उन्होंने ये बात अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI की रिपोर्ट का विश्लेषण करने वाली एम्स की रिपोर्ट के आधार पर कही है। ज्यादा जानकारी के साथ विनीत खरे।
दिल्ली पुलिस प्रमुख बीएस बस्सी ने ट्वीट कर बताया कि सुनंदा पुष्कर मामले में मेडिकल बोर्ड की राय मिल गई है। पत्रकारों से बात करते हुए बीएस बस्सी ने कहा,
देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या रुख लेगी जब तक हम कंक्लूड नहीं करते तब तक कहना कभी भी संभव नहीं होता। बट एज फार एज जो इन्वेस्टिगेशन हमारी अब तक हुई है, जब हमारे पास जो मेडिकल एविडेंस अब तक है, उसके बेसिस पे एक बात क्लियर है कि डेथ इज not natural, it is unnatural.
बस्सी के मुताबिक FBI ने कहा है कि सुनंदा पुष्कर की मौत रेडियो धर्मी पदार्थ से नहीं हुई थी। सुनंदा पुष्कर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी थी। उनका शव 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल से मिला था। सुनंदा का नाम सबसे पहले अप्रैल 2010 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की कोची टीम की खरीद से जुड़े एक विवाद में सामने आया था। इस टीम की खरीद में शशि थरूर की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे। मामला इतना बढ़ा कि थरूर को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल कर लिया गया। इस विवाद के बाद सुनंदा पुष्कर को भी कोची टीम में अपनी हिस्सेदारी छोड़नी पड़ी थी। इससे पहले वे दुबई की एक कंपनी में काम करती थी। उस समय शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर से अपने रिश्तों की बात कबूल की थी और अगस्त 2010 में उन दोनों ने शादी कर ली। 15 जनवरी 2014 को अचानक शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के रिश्ते पर सवाल खड़े हुए जब शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान की पत्रकार मेहर तरार को किए गए कुछ ट्वीट सामने आए, जिनसे लगा कि उन दोनों के बीच संबंध है। इसके बाद थरूर ने ट्वीट किया कि अकाउंट हैक कर लिया गया है। पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने ऐसे किसी संबंध से इनकार किया था। विवाद के बढ़ने के बाद थरूर और सुनंदा ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था, हमारा वैवाहिक जीवन सुख से बीत रहा है और हम चाहते हैं कि यह ऐसा ही रहे। मौत के बाद एम्स के एक सीनियर फोरेंसिक डॉक्टर ने सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव डाले जाने का कथित तौर पर आरोप लगाया था। सुनंदा पुष्कर की ऑटोप्सी रिपोर्ट में एक दर्जन चोटों के निशानों का जिक्र किया गया था। उनके गाल पर खरोच और बाईं हथेली पर दांत के काटने का निशान मिला था।
रिपोर्ट सुना रहे थे विनीत खरे। मध्य प्रदेश में ट्रेन में एक मुस्लिम दंपति के साथ गौमांस रखने के शक में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है। भोपाल से शूरे नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के निवासी मोहम्मद हुसैन और उनकी पत्नी नसीम बानो कुशीनगर एक्सप्रेस की जनरल बोगी से खंडवा से हरदा आ रहे थे। हरदा से एक स्टेशन पहले खिड़किया में अचानक 14-15 लोग बोगी में चढ़ने की कोशिश करने लगे। खचाखच भरी इस बोगी में चढ़ने का विरोध करने पर इन लोगों ने न सिर्फ यात्रियों की पिटाई की बल्कि उनके सामान को खोलकर तलाशी भी ली। मोहम्मद हुसैन ने आरोप लगाया कि ये लोग गौरक्षा समिति के थे और उन्होंने उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की।
अंदर गए, उन्होंने बैग वैग की तलाशी वगैरह ली, जाने मेरे बैग की नहीं, किसी का बैग की, किसी की अटैची की, किसी के झोले की, जो भी था सबके, तो हमारे भी हमारे बैग वगैरह की उन्होंने तलाशी लिए करे। हमारी बीवी उसको बैग को वापसी भरना चालू कर दी और चिल्ला चोट करने लगी, तो हमारी बीवी का हाथ पकड़ा उसने और एक साइड वो लेटरिन तरफ उसने फेंक दिया, मतलब डब्बे तरफ उसने धक्का मार दिया उसको। उसने बाहर निकल के वो कुछ लोग जो बाहर खड़े हुए थे, जाने वो क्या ऐसे जगह नहीं थी अंदर, तो इन्होंने क्या करा बैग को बाहर भी फेंके, मतलब कुछ बैग बाहर फेंके तो बाहर जो खड़े थे तो वो बाहर तलाशी वो भी ले रहे थे और अंदर भी ले रहे थे, क्योंकि जगह ही नहीं थी अंदर चढ़ने की, इतने लोग अंदर कैसे चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पा रहे थे। तो उससे ना हमारी बीवी ने चिल्ला चोट वगैरह करने लगी तो उस पर बाहर निकल के वो मारने लगा। मतलब
इन लोगों ने दूसरे यात्रियों के साथ भी वही सुलूक किया, लेकिन दूसरे लोग बाहरी थे इसलिए उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। ये इस शक में आए थे कि इसमें कोई व्यक्ति बीफ का परिवहन कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने फौरन पहुंचकर मामले को संभाला। हरदा SP रामबाबू शर्मा ने बताया,
GRP में कुशीनगर जो खिड़किया पुलिस चौकी है हरदा थाने में, वहाँ पर खिड़किया रेलवे स्टेशन है, GRP पुलिस ने ये कुशीनगर एक्सप्रेस में कुछ पकड़ा था, उस पर कुछ विवाद हुआ था, उसमें मुकदमा कायम हो चुके थे और आरोपी भी गिरफ्तार हुए और GRP पुलिस जो है NRC उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है दोनों, और GRP पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, DSP साहब है वहाँ दुष्यंत, बाकी हम लोग चूंकि डिस्ट्रिक्ट में है तो इसलिए निगाह रखे हुए हैं, शांति है, कहीं कोई दिक्कत।
पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच चल रही है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के दादरी में एक घर में गौमांस रखने के शक में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी।
ये थी भोपाल से शूरे नियाजी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह ने प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। अब सवाल यह है कि अगर भारत मौलाना मसूद अजहर के पठानकोट हमले में शामिल होने के ठोस सबूत दे देता है तो क्या उन्हें भारत के हवाले कर दिया जाएगा? इस्लामाबाद से शुमायला जाफरी की रिपोर्ट।
पठानकोट एयरबेस पर जनवरी के पहले हफ्ते में हमला किया गया था जिसमें 7 भारतीय फौजी और 6 शिद्दत पसंद हलाक हो गए थे। اور بھارتی حکومت کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ حملے کی کڑیاں پاکستان میں موجود شدت پسند جماعت جیش محمد سے ملتی ہیں۔ پہلے بھی نئی دلی کی جانب سے بھارت کی سرزمین پر ہونے والے حملوں میں کئی پاکستانی شہریوں کے ملوث ہونے کے الزامات لگائے گئے، جن میں جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید اور خود مولانا مسعود اظہر کا نام بھی شامل ہے، لیکن کسی کو بھارت کے حوالے نہیں کیا گیا۔ قانونی طور پر اس معاملے کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بہت سی الجھنیں موجود ہیں، اور مولانا مسعود اظہر یا کسی بھی پاکستانی شہری کو بھارت کے حوالے کرنا آسان نہیں۔ انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ احمر بلال صوفی نے اس نقطے کی وضاحت کچھ یوں کی۔
پاکستان اور انڈیا کے مابین کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے۔ ابھی تک میرا خیال ہے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے بغیر کسی کو ایکسٹریڈائٹ کیا ہو۔
قانونی ماہرین کے مطابق مولانا مسعود اظہر کے خلاف پاکستان میں کوئی مقدمہ موجود نہیں، لیکن انہیں جس قانون کے تحت پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم بھارت سے کیا ثبوت لاتی ہے اور کیا وہ ثبوت اتنے مضبوط ہوں گے کہ مسعود اظہر کی حوالگی کا سوچا جا سکے۔ احمر بلال صوفی نے بتایا،
جب آپ کسی کو پریونٹیو حراست میں رکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں۔ 30 days میں ایک آپ کے پاس ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ تھوڑا سا بڑھ بھی سکتا ہے، اور اس میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی بھی ایویڈینس کلیکٹ ہو گئی ہے۔ شروع میں تو انٹیلیجنس بیسڈ ایویڈینس ہی ہوگی جو تبادلہ جس کا ہوگا، لیکن انٹیلیجنس بیسڈ ایویڈینس کیا ایڈمیسیبلٹی کے کرائیٹیریا کو پورا کرتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دونوں ملکوں کے حکام کو دیکھنے پڑے گی اور فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس ٹرائل کا وہی فیٹ ہو سکتا ہے جو بامبے ٹرائل کا ہوا۔
پہلے بھی کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں جب پاکستانی شہریوں کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے دوسرے ملکوں کے حوالے کیا گیا۔ اس کے باوجود اینالسٹ کا خیال ہے کہ اپنے کسی بھی شہری کو اس طرح سے بھارت کے حوالے کرنا پاکستان حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
اتیوادی سنگٹھنوں کے چنگل میں بھارت پاک سمبندھ، پردھان منتری نریندر مودی کی لاہور یاترا کے بعد بندھی امیدوں پر پٹھان کوٹ حملے سے پانی پھرا۔ بھارت اور پاکستان کے بیچ سمبندھ سدھارنے کی کوششوں پر پلیتا کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیا دونوں دیش اپنے اپنے اتیوادیوں کے چنگل میں ہیں؟ اس بار انڈیا بول میں اسی وشے پر ہوگی چرچا۔ کاریکرم میں حصہ لینے کے لیے شنیوار 16 جنوری کو شام 7:30 بجے مفت فون کیجیے 1811-7000 یا 1811-7001 پر۔
بی بی سی انڈیا بول۔
15 جنوری کا دن بھر سن رہے ہیں آپ سندیپ سونی کے ساتھ۔ آج ہے شکروار، اور ہر شکروار کی طرح آپ کو انتظار ہوگا ویویچنا کا۔ جب نریندر مودی ستا میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اجیت ڈوال کو راشٹری سرکشا سلاحکار کے طور پر نیوکت کیا۔ اب تک کے سبھی راشٹری سرکشا سلاحکاروں میں ڈوال کو سب سے طاقتور مانا جاتا ہے، لیکن حال میں ڈوال کی دیکھ ریکھ میں ہوئے کئی ابھیانوں کے ناکامیاب ہونے سے ان کے اب تک کے بہترین کریئر پر کچھ داغ بھی لگے ہیں۔ اجیت ڈوال کے اب تک کے کریئر پر نظر دوڑا رہے ہیں ریحان فضل آج کی ویویچنا میں۔
پاکستان's vulnerability is many many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan.
پاکستان بھارت سے کہیں زیادہ نازک ہے۔ ایک بار انہیں یہ احساس ہو جائے کہ بھارت نے اپنا گیئر رکشاتمک موڈ سے بدل کر رکشاتمک آکرامک کر لیا ہے تو وہ بھارت کو پریشان کرنے کی جرت نہیں کر پائیں گے۔ آپ ایک ممبئی کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ بلوچستان کھو دیں۔
ٹٹ فار ٹیٹ یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ کے انداز میں اپنے ویرودھی کو دھمکانے کی یہ ادا اور کسی کی نہیں بلکہ بھارت کے راشٹری سرکشا سلاحکار اجیت ڈوال کی ہے۔ چاہے میزورم میں پرتکتا وادیوں کے چوٹی کے نیتتو کو بھیدنا ہو یا آپریشن بلیک تھنڈر کے دوران آئی ایس آئی خفیہ ادھیکاری کا بھیج دھر سوان مندر کے اندر کی گپت سوچنائیں نکلوانی ہو، یا قندھار ویمان اپہرن کانڈ کے دوران طالبان سے بات چیت کرنا ہو، بھارت کے اسپائی ماسٹر اجیت ڈوال کی بہت بڑی بھومکا رہی ہے۔ اجیت ڈوال کے بیچ میٹ اور ان کے ساتھ کام کر چکے سی آئی ایس ایف کے پورو مہا نردیشک کے ایم سنگھ کہتے ہیں،
انٹیلیجنس بیورو میں میرے خیال سے آپریشن کے معاملے میں اجیت ڈوال سے اچھا افسر کوئی آج تک نہیں ہوا ہے۔ اور شروع سے ہی 1972 میں آئی پی میں دلی آئے، سال دو سال بعد ہی میزورم میں حالت بڑی خراب تھی، اگین میزورم 5 سال وہاں رہے، और मिजोरम में जो शांति वार्ता हुई, जो ऑपरेशन हुआ, इतना काम किया उन्होंने मिजोरम में शांति हुई, उसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का है। शेयर ऑपरेशन 80 के दशक में पंजाब में हालत बहुत ख़राब थी, पंजाब में जाके जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन ब्लैक थंडर ऑपरेशन में जो इनका योगदान रहा उसको वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। आर्मी में कीर्ति चक्र एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है, जो आर्मी के ऑफिसर्स के बाहर नहीं मिलते हैं। मेरे ख्याल से अजीत डोवल एक अकेला एक्सेप्शन है शायद जिनको कीर्ति चक्र भी मिला है।
जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अजीत डोवाल को अपना मुख्य सुरक्षा सलाहकार बनाया तो लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। कहा जाता है कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत आने के न्योते का मास्टर स्ट्रोक डोवाल के दिमाग की उपज थी। डोवाल के पूर्व बॉस और इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के प्रमुख रहे अमरजीत सिंह दुलत मानते हैं,
क्योंकि तालमेल बहुत अच्छा है ना मोदी जी और डोवाल साहब का, तो इसलिए स्टिंट तो अच्छा है। स्टाइल बदलता है इंसान के साथ, बाकी काम तो वही चलता है। मैंने ब्रजेश मिश्रा जी के साथ काम किया तो वो भी एक बहुत बड़ी हस्ती थी, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस इतना था कि उसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे वाजपेयी साहब के टाइम में, टेन्योर में, 3-4 बहुत बड़े क्राइसिस आए, लेकिन कभी कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई, बड़ा सोच समझ के रिएक्ट किया गया। आज क्या है कि रिएक्शन बहुत जल्दी आता है, इमीडिएट रिएक्शन आते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ तकरीबन मैं अपने कमरे से देख सकता था पीएमओ से, और ब्रजेश मिश्रा जी उसको टेलीविजन पे देख रहे थे, पर उस किस्म की एक्साइटमेंट नहीं थी कि मैं भागा जाऊँ वहाँ पार्लियामेंट जाऊँ, ये मीनान से बैठे रहे, अपना सिगरेट पी रहे थे और उसको देख रहे थे कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। सोचा, फिर लंच पे प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए, जिसके बाद फिर वाजपेयी जी ने स्पीच दी, ये नहीं चलने वाला है। चीज़ें उस टाइम में बड़ी रिलैक्स्ड और सोच समझ के होती थी। वो जो हाईजैकिंग के मामले में ज़रूर था कि भाई ये क्यों छोड़े गए, लेकिन और रास्ता क्या था, या तो 174 लोग थे उनको मरवा दें या उनकी,
और उसमें भी डोवाल मेन नेगोशिएटर थे।
बिल्कुल थे, बल्कि ज़्यादातर उनका रابطہ मेरे साथ रहता था। वहाँ से बड़ा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट था कंधार में, तालिबान के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं था, और तालिबान कह रहा था कि फटाफट करो जो भी आपको करना है, नहीं तो हम ये जहाज़ यहाँ से इसको उड़वा देंगे, हम नहीं रखेंगे यहाँ। तो एक बहुत प्रेशर में इन लोगों ने काम किया वहाँ कंधार में, और जो भी निगोशिएशन हुए मैं समझता हूँ बड़े अच्छे हुए, क्योंकि एक समय उनकी डिमांड तो कोई 100 लोगों को की रिलीज़ की थी, वो शायद 75 पे आई, 25 पे आई, और अल्टीमेटली 3 लोगों को रिलीज़ करना पड़ा, जो एक कंसेशन था।
ये सही है कि उनके कार्यकाल के दौरान भारत को कुछ बड़ी सफलताएं मिली हैं, चाहे वो फादर प्रेम कुमार को आईएस के चंगुल से छुड़वाना हो, या श्रीलंका में 6 भारतीय मछुआरों को फांसी दिए जाने से एक दिन पहले माफी दिलवाना हो, या देपसांग और देमचोक इलाके में स्थायी चीनी सैन्य कैंपों को हटवाना हो, डोवाल को वाहवाही मिली है। लेकिन कई मामलों में उन्हें नाकामयाबी का मुंह भी देखना पड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस के सह संपादक सुशांत सिंह कहते हैं,
अगर आप डिप्लोमेसी के तौर पर देखें और खास तौर पर भारत के जो नेबरहुड है उसमें भारत की स्थिति पिछले 18 महीनों में अच्छी नहीं हुई है, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो और भी कंट्रीज हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ जो फ्लिप फ्लॉप हुआ है, तो उस मुद्दे से, उस नज़र से तो 19 महीने में कोई खास अचीवमेंट नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में एनएसएस के। जहां तक टेरर और इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल आता है, 2-3 बड़ी टेरर स्ट्राइक्स हुई हैं, एक पठानकोट की स्ट्राइक हुई है, उससे पहले गुरदासपुर में भी टेरर स्ट्राइक हुई है, कश्मीर में टेररिज्म बड़ा है, कश्मीर के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वह शायद थोड़ी खराब हुई है पहले के मुकाबले। उन चीजों से अगर आप देखें तो शायद लोगों को ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि डोवाल साहब एक बड़े जाने माने इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं, ऊंचे आला दर्जे के, तो लोगों को उम्मीदें थी कि इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर शायद उनके अंडर में यह बेहतर काम होगा, वह शायद उतना बेहतर नहीं हो पाया है।
एक और जाने माने सुरक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला का मानना है कि निसंदेह डोवाल के क्रेडेंशियल्स बहुत ही प्रभावशाली हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए उनका जो वर्ल्ड विजन होना चाहिए वो शायद उनमें नहीं है।
अजीत डोवाल एक बहुत ही काबिल और बहुत ही सफल इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं अपने समय में, और उनकी रेपुटेशन पूरे इंटेलिजेंस ब्यूरो में फैली हुई है, सारे कर्मचारी और ऑफिशियल्स जो हैं उनको बहुत मानते हैं। लेकिन कोई भी इंसान अपने फील्ड में जो है स्पेशलिस्ट होता है, और फील्ड्स में जो है उसकी थोड़ी कम काबिलियत, कम जानकारी होती है। अजीत डोभाल की जानकारी फॉरेन रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में इतनी नहीं है जितनी उनकी जानकारी इंटेलिजेंस के क्षेत्र में है। तो जब कोई ऐसा ऑपरेशन आता है जिसमें इंटेलिजेंस, मिलिट्री ऑपरेशंस, फॉरेन रिलेशंस तीनों पहलू होते हैं, तो सिर्फ एक इंसान को अपने लेवल पे जो है उस ऑपरेशन के सारे डिसीजंस जो है बनाना शायद सही ना हो। जब पठानकोट का हमला हुआ तो उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को देखना चाहिए था कि इस ऑपरेशन में जो समस्या खड़ी हुई है उसमें कई पहलू हैं और उस पहलू के अलग अलग जो हैं स्पेशलिस्ट, जो माहिर हैं, उनको बुलाना जरूरी रहेगा। जब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन सामने आता है या समस्या खड़ी होती है तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ये करना चाहिए था कि बजाय सारे डिसीजंस खुद लेने के, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कन्वीन करें, अलग अलग स्पेशलिस्ट को हाजिर करें, उनके इनपुट्स लें और फिर अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, और ना कि जल्दबाजी में और अकेलेपन में जो है सारे डिसीजंस लेना जो कि बाद में शायद इतने अच्छे ना साबित हो।
CISF के पूर्व महानिदेशक और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी KM सिंह उनसे सहमत नहीं है।
पहली बात, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का एकदम इनडेप्थ नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर देश सुरक्षित हो तभी आप बाहर के बारे में बाद में सोचेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी में इन्होंने नॉर्थ ईस्ट डील किया है, पंजाब डील किया है, कश्मीर डील किया है और इस सब के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रहे, इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी के हर मामले पर इनका जितना ज्ञान है, मतलब उसके बारे में कुछ कहना बेकार है। उसके बाद से दिन दूसरी चीज क्या होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में कि विदेश की नीति, विदेशी के संबंध, खास करके जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उनके साथ उनकी नीति, उनके सिद्धांत के बारे में, संबंध के बारे में। हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, पड़ोसी देशों में सबसे इंपॉर्टेंट तो पाकिस्तान ही है ना, और पाकिस्तान में 6.5 साल वहाँ पोस्टेड रहे। उसके अलावा ये 4 साल भारतीय उच्चायुक्त को इंडियन हाई कमीशन लंदन में ही पोस्टेड रहे, तो इन्होंने 10.5 साल तो फॉरेन पोस्टिंग किया है। तीसरा होना चाहिए दूरदृष्टिता, विजनरी। विजनरी तो बहुत है, मतलब ये इतना लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, दूरदर्शिता इतनी है उनमें, इसीलिए ऑपरेशनली बहुत सक्सेसफुल है, बहुत साउंड है। और चौथी होनी चाहिए कर्मठता। तो कर्मठता जहाँ तक इनका है, मैं कहूँ कि 15 घंटा 16 घंटा 18 घंटा भी काम करना पड़े दिन में तो इनको उसमें, इस उम्र में भी he must be around 71 today, कोई दिक्कत नहीं इनको।
अजीत डोभाल के आलोचक कहते हैं कि वो हर जगह खुद उपस्थित होकर हर चीज हैंडल करना चाहते हैं।
इसको दो तरीके से देखने की जरूरत है। एक तो इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं, इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस जो हैं उनको ठीक नहीं किया गया है, और क्योंकि उन इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस को ठीक नहीं किया गया है, ज़्यादा पर्सनालिटी ओरिएंटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा लोड अपने ऊपर लेने का एक नतीजा ये भी है कि जैसा कि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने कहा कि जब चीन और भारत के बीच जो बातचीत होती है बॉर्डर टॉक्स की, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया की साइड से, NSA स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो टॉक 5 तारीख को होनी थी, पर चूंकि एक टेरर अटैक हो रहा था, छोटा सा टेरर अटैक था, वो चल रहा था, तो NSA साहब ने चीन जाने की अपना प्लान कैंसिल कर दिया। भाई 1.3 बिलियन के देश में ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो सबसे बड़ा नेबर है आप उसके साथ टॉक्स कैंसिल कर दें क्योंकि 6 टेररिस्ट किसी जगह पर लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का नतीजा ये है कि इंटरनेशनली आपकी थोड़ी सी शायद थू-थू हो रही होगी, लोग कह रहे होंगे साहब कोई कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही व्यक्ति के ऊपर सब कुछ।
लेकिन डोभाल के समर्थक कहते हैं कि ये मैंडेट उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, अपने लिए ये रोल उन्होंने खुद नहीं चुना है।
वो बात वही आ जाती है कि ये सरकार चाहती क्या है, मोदी जी क्या चाहते हैं। जब मोदी जी उन पर इतना रिलाई करते हैं और चाहते हैं कि डोभाल साहब खुद करें, तो फिर तो डोभाल साहब को करना है ना, और ऑप्शन क्या है, और उनका स्टाइल भी वही है जो मोदी जी का है। ये क्रिटिसिज्म जो आप कह रहे हैं ना कि डोभाल साहब के बारे में है, ये मोदी जी के बारे में भी लोग कहते हैं कि कैबिनेट तो काम करती नहीं है, मतलब है मंत्री तो जो हैं वो अपना अपना डिपार्टमेंट देखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि मेन क्रूशल डिसीजन मोदी जी लेते हैं, तो इस तरह डोभाल साहब भी लेते हैं।
डोभाल के आलोचक कहते हैं कि उनकी भाषा परिष्कृत नहीं है, वो मुंहफट हैं और आउट ऑफ टर्न बोलते हैं, लेकिन दुलत इस आलोचना को सही नहीं मानते।
उस कैनन बिल्कुल वो नहीं है, वो बहुत हर एक चीज करते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, बड़े सोच समझ के है, वो ऐसी बात नहीं। तो उसमें देयर इज ऑलवेज मेथड इन द मैडनेस, ना कोई वो ये चीज सुनना चाहता होगा, मोदी जी क्यों कई चीजें कहते हैं, ये सरकार क्यों कई चीजें कहती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना।
पठानकोट हमले का जो जवाब सरकार की तरफ से आया है उसके सूत्रधार अजीत डोभाल ही थे। उनकी भूमिका पर भी सामरिक विश्लेषकों की राय बटी हुई है।
देखिए जब भी ये चीज़ें होती हैं और मैं इस सिस्टम में रहा हूँ, मैंने देखा है अंदर से सरकार को, 40 साल रहा हूँ मैं सरकार में, क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस बार एक चीज़ ज़रूर है कि जब लोग कहते हैं इंटेलिजेंस थी और 30 तारीख से इंटेलिजेंस थी कि पठानकोट में कुछ होने जा रहा है, और उसके बाद उससे जो बड़ी बात है, देखिए इंटेलिजेंस को क्या होता है फील्ड में, कई बार लोग मानते नहीं, कहते हैं ये सब कहानियाँ हैं, कुछ नहीं है, ये फजूल है, लेकिन जब पंजाब पुलिस का एक SP अगवा कर लिया जाता है आतंकवादियों से, तो और वो कह रहा है कि साहब चार लोग आर्मी फटीक या आर्मी की वर्दी में थे, फिर उस पर 24 घंटे क्यों नहीं हुआ, ये सवाल जरूर उठता है।
कई पूर्व जनरलों को ये बात नागवार गुजरी है कि पूरी तरह से सैनिक ऑपरेशन को संभालने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भेजा गया। सुशांत सिंह कुछ अन्य मुद्दों पर डोवाल को घेरते हैं।
देखिए साहब, पठानकोट में कुछ बातें अच्छी हुई। पठानकोट में कि एक उनके पास हार्ड इंटेलिजेंस थी और वो हार्ड इंटेलिजेंस मिलने पर उन्होंने 3 बजे वो मीटिंग की, उस मीटिंग में लोग आए और उन्होंने एक प्लान बनाया और प्लान के बाद उन्होंने लोगों को प्री पोजिशन किया, वहाँ तक तो ठीक था, पर उसके पश्चात जो हुआ उसके लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लान NSA के अंडर में बन रहा था, कोई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग नहीं हुई, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई, तो सारी जिम्मेदारी जो भी हुई, अगर 7 लोग मरे और वो लोग एयरफोर्स बेस के अंदर आए, तो वो भी शायद जिम्मेदारी NSA साहब के ऊपर ही आती है, क्योंकि वो पर्सनली इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, इसी ऑपरेशन की प्लानिंग उन्होंने की थी। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं भारत सरकार के अंदर, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, आप उनको क्यों नहीं एक्टिवेट कर रहे हैं? आप अगर उनको एक्टिवेट करें, जिम्मेदारी को बांटें, भाई भारत के गृहमंत्री हैं, भारत का पूरा महकमा है, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको यूज़ नहीं किया जा रहा है और सारे डिसीजन सेंट्रलाइज किए जा रहे हैं, समस्या इसलिए हो रही है।
फिलहाल डोवाल निशाने पर हैं। अगर उनके नेतृत्व में भारत में प्रोएक्टिव सामरिक सोच विकसित नहीं होती तो ये उनके करीने से बनाए गए ट्रैक रिकॉर्ड पर कुछ धब्बे छोड़ सकता है, और ऐसा डोवाल कभी होने देना नहीं चाहेंगे। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
और अब खेल की खबरों के लिए आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं।
संदीप, अगर आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की बात की जाए तो भारत बुरी तरह से 7 विकेट से हारा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ही एक अच्छा समाचार ये है कि भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता के साथ खेल रही सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने आज सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में जोड़ी ने फ्रांस की तीसरी वरीयता हासिल जोड़ी कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविच को 1-6, 7-5, 10-5 से मात दी। ये सानिया हिंगिस का 11वां खिताब है। इतना ही नहीं, इस जोड़ी की ये लगातार 30वीं जीत है। उधर पुरुष युगल वर्ग में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन मर्चे की जोड़ी भी सिडनी इंटरनेशनल के फाइनल में पहुंच गई है। और अब बात क्रिकेट की, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से मात दी। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 309 रनों का लक्ष्य था, जो उसने एरोन फिंच के 71, शॉट मार्च के भी 71 और उसके बाद जॉर्ज पैली के नाबाद 76 रन की मदद से केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हालांकि इससे पहले भारत ने रोहित शर्मा के शानदार 124 रन की मदद से 8 विकेट खोकर 308 रन बनाए थे। तो इस तरह से भारत की ये लगातार दूसरी हार रही। तीसरा मुकाबला रविवार को खेला जाएगा।
बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर प्रगति सक्सेना से।
BBC समाचार। दिल्ली पुलिस प्रमुख BS बस्सी ने कहा है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर की मौत स्वाभाविक नहीं थी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जां क्लॉड यूंकर ने कहा है कि वो इस बात को लेकर बहुत विश्वस्त हैं कि ब्रिटेन की यूरोपीय आयोग से अपने रिश्तों में सुधारों की मांग का एक स्थायी समाधान फरवरी तक निकल आएगा। पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने उन कई मदरसों को बंद कर दिया है जिनका संचालन कथित तौर पर प्रतिबंधित चरमपंथी गुट जैश ए मोहम्मद कर रहा था। तुर्की ने कम से कम एक दर्जन अकादमीशियनों को हिरासत में लिया है जिन्होंने कुर्द चरमपंथियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए एक याचिका पर दस्तखत किए थे। सियरा लियोन में इबोला की महामारी से एक और मौत हो गई है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में मदद की दीपक जसरोटिया ने। अगला प्रसारण घटना चक्र रात 9:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।